सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तान् अनादृत्य यः अविद्वान् अर्थान् आरभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्ति अर्थः आरब्धः च पुनः पुनः ताननादृत्य यो विद्वान् अर्थान्नारभते स्वयम् तस्य व्यभिचरन्त्यर्था तस्य व्यभिचरन्त्यर्थः आरब्धाश्च पुनः पुनः ताननादृत्य यो विद्वान् अर्थानारभते स्वयम् तस्य व्यभिचरन्त्यर्थः आरब्धाश्च पुनः पुनः ताननादृत्य यो विद्वान् अर्थानारभते स्वयम् तस्य व्यभिचरन्त्यर्थः आरब्धाश्च पुनः पुनः ताननादृत्य यो विद्वान् अर्थानारभते स्वयम् तस्य व्यभिचरन्त्यर्थः आरब्धाश्च पुनः पुनः ताननादृत्य यो विद्वान् अर्थानारभते स्वयम् तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः ताननादृत्य यो विद्वान् अर्थानारभते स्वयम् तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः ताननादृत्य यो विद्वान् अर्थानारभते स्वयम् तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च माताजी ताननादृत्य यो विद्वान् नारभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः ताननादृत्ययो विद्वान् अर्थानारभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः ताननादृत्ययो विद्वान् अर्थानारभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः तान उनकी अनादृत्य उपेक्षा करके यह जो कोई अविद्वान धूर्त अर्थान योजनाएं आरभते प्रारंभ करता है स्वयं स्वयं तस्य उसके व्यभिचरन्ति सफल नहीं होते अर्थ कार्य आरब्ध प्रयत्न किए गए च तथा पुनः पुनः बार बार अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद ऐसा मूर्ख पुरुष जो कोई मनोकल्पना द्वारा अपने निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है और साधुओं द्वारा स्थापित दोषहीन आदेशों को मान्यता नहीं प्रदान करता वह अपने प्रयासों में बार बार असफल होता है। तात्पर्य आजकल प्राचीन आचार्यों तथा मुक्त पुरुषों द्वारा दिए गए निर्दोष आदेशों का उल्लंघन करना एक फैशन बन चुका है। आजकल के लोग इतने पतित हो चुके हैं कि उन्हें मुक्त जीव या बद्ध जीव में अंतर प्रतीत नहीं होता। बद्ध जीव में चार दोष होते हैं, वह त्रुटि करेगा, वह मोहग्रस्त होगा, वह दूसरों को धोखा दे सकता है तथा उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। अतः हमें मुक्त पुरुषों से आदेश ग्रहण करना होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सीधे भगवान से उन व्यक्तियों के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है जो इन आदेशों का दृढ़ता से पालन करते रहते हैं। कोई अनुयायी भले ही मुक्त पुरुष न हो किंतु यदि वह मुक्त रूप भगवान का अनुसरण करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके कर्म भौतिक प्रकृति के कल्मशों से मुक्त होते हैं। अतः भगवान चैतन्य कहते हैं, मेरे आदेश से तुम गुरु बन सकते हो। भगवान के दिव्य आदेशों में पूर्ण श्रद्धा रखकर तथा इन आदेशों का पालन करके मनुष्य तुरंत गुरु बन सकता है। भौतिकतावादी लोग मुक्त पुरुष से आदेश ग्रहण करने में रुचि नहीं रखते, वे तो अपने ही कल्पित विचारों में रुचि रखते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने प्रयासों में बार बार असफल होना पड़ता है। क्योंकि अब सारा संसार बद्ध जीवों से अपूर्ण आदेशों का अनुसरण कर रहा है, इसलिए मानवता पूर्णतः मोहग्रस्त है। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग पृथ्वी देवी के विचारों को सुन रहे हैं। पीछे की घटना आप जानते हैं, पृथु महाराज कुपित हो करके पृथ्वी को दंडित करना चाहते हैं। पृथ्वी भय के मारे गाय का रूप बना करके भाग रही है, लेकिन भागने के बावजूद भी उसको ऐसा महसूस हुआ कि हम पृथु महाराज से बच नहीं सकती। जैसे कोई व्यक्ति काल से नहीं बच सकता, हर एक प्राणी के पीछे काल लगा हुआ है, उसी प्रकार पृथ्वी देवी महसूस कर रही कि मैं कहीं भी भाग रही हूँ, पृथ्वी महाराज पीछे हैं, वे छोड़ेंगे नहीं। तो वह पृथ्वी महाराज से प्रार्थना करने लगे, कई एक प्रकार से प्रार्थना की है जिनको आप सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी वह देखी कि उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। वह पृथ्वी महाराज की स्तुति करने लगे, उनको बतलाए कि आप भगवान के अवतार हैं, आपके व्यवहार को हम माया मोहित जीव नहीं समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके चरणों पर गिर गई और भयभीत थी, लेकिन अपने को रोक करके उनके स्तुति की। यद्यपि पृथ्वी महाराज का अब भी क्रोध शांत नहीं हुआ था, प्रस्फुरिता धर्म, क्रोध के मारे उनके ओठ कांप रहे थे। पुनः आह अवनिर्भीता संस्तभ्यात्मान मात्मन, लेकिन किसी तरह वे अपने घबराहट को रोकी और पृथ्वी महाराज से फिर से कहने लगे कि सन्यच्छा विभो मन्यु निबोध श्रावितम चमे, हे प्रभो अभिभो आप सब तरह से समर्थ हैं, लेकिन अपने क्रोध को थोड़ा शांत कीजिए, मैं क्या कह रही हूँ एक बार विचार कर लीजिए, हम जो सुना रही हूँ उस पर विचार कर लीजिए, क्योंकि सर्वतः सार मादत्ते यथा मधुकरो बुध, कोई भी विद्वान व्यक्ति है तो अच्छी बात को कहीं से ग्रहण कर लेता है, जैसे कोई भौंरा है तो किसी फूल से मधु निकाल लेता है, रस निकाल लेता है, तो उसी प्रकार कोई भी विद्वान व्यक्ति है तो सर्वतः सारम आदते, कहीं भी अच्छी बात है तो उसको स्वीकार कर लेता है। हमारे बात पर विचार कीजिए। और वह समझाने लगे, देखिए कोई व्यक्ति इस संसार में कुछ प्राप्त करना चाहता है या इस संसार से बाहर कुछ प्राप्त करना चाहता है तो सबके लिए पहले से ही कुछ उपाय निर्दिष्ट है, ऋषियों ने उपाय निश्चित किया है, उसका आचरण करके उसको जांच परख लिया है, जो व्यक्ति उनका आचरण करता है भले ही वे कमजोर हो लेकिन ऋषियों में श्रद्धा है, वे लोग जो उपाय बतलाए हैं तो उनका आचरण करता है तो उपेयान बिंदते अंजसा, वह आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ तक तो वह पॉजिटिव वे में बतला रही है कि पूर्व के ऋषि लोग जो उपाय निश्चित किए हैं तो उसका यदि कोई आचरण करता है श्रद्धा से तो अवरह अपि, वह भले ही निकृष्ट हो लेकिन उपेयान बिंदतेन जैसा, वह अपने उपेय को आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन अब कह रही हैं कि जो व्यक्ति उन उपायों का अनादर करता है, ऋषियों के विचार का अनादर करता है, तो पहले तो वह अविद्वान, वह मूर्ख है, वह स्थिति को नहीं समझ रहा है, ऋषियों के विचार का, उनके उपाय का अनादर करके और अपना योजना लागू करता है, अपने ढंग से कार्य करना चाहता है, तो तस्य व्यभिचरण चरता, उसको सफलता नहीं मिलती है, उसके लक्ष्य इधर उधर चले जाते हैं, वो फल को नहीं प्राप्त करता है, फल भटक जाते हैं और आरब्धस्य पुनः पुनः। और जो वह उपक्रम प्रारंभ किया है उसमें भी उसको क्लेश होता है, वो फल की भी प्राप्ति नहीं होती है, उसमें भी कठिनाई है, और जो उसका उपाय है उसके आचरण में भी कठिनाई है। तो पूर्वदर्शिता, पहले के ऋषि मुनि जो उपाय दिखाए हैं तो उनमें श्रद्धा न रखने से दोनों लेवल पर, दोनों स्तर पर कठिनाई है, एक तो कार्य करने में ही उपक्रम में भी कठिनाई है और फल प्राप्ति में भी कठिनाई है। इस श्लोक में यही कह रही है, आगे वह बतलाई है कि आप उपाय का अवलंबन कीजिए, मैं पृथ्वी के रूप में हूँ तो पृथ्वी से कुछ, मैं गाय के रूप में हूँ तो गाय से कुछ प्राप्त करना है, गाय से दूध प्राप्त करना है, तो उसको दंड देना उपाय नहीं है। उसका सीधा से उपाय है कि बछड़ा नजदीक लाया जाता है। किसी के पास कोई गाय है, उसे दूध निकालना चाहता है, उसको पीटने लगे तो दूध नहीं देगी। बछड़ा को लाने से, बछड़ा के स्नेह से वो पिन्हा जाती है और व्यक्ति दूध निकाल लेता है। तो मैं पृथ्वी गाय के रूप में हूँ, तो आप बछड़े का उपाय कीजिए और जो इच्छा हो हमसे दोहन कर लीजिए। तो पृथ्वी देवी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही है कि जो पूर्व स्थापित पंथ है उसका आचरण करने से कमजोर व्यक्ति भी आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और ये कह रही है दोनों जगत के मनुष्य के लिए लागू होगा। कोई प्राकृत वस्तु प्राप्त करना चाहता है उसके लिए भी यही सिद्धांत है, और कोई अप्राकृत प्रकृति से परे की वस्तु प्राप्त करना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए भी यही सिद्धांत है। और जो पूर्व के स्थापित मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा उसको जरूर कठिनाई होगी, उसको क्लेश होगा और अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत शोक का विषय है कि इस समय संसार के अधिक लोग पहले के स्थापित विचारों का अनादर कर रहे हैं, इसी से कष्ट की भी वृद्धि होती जा रही है, एक एक से समस्या बढ़ती जा रही है। अपने योजना से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तो प्रकृति के अंतर्गत हम लोग हैं और कुछ प्राकृत लक्ष्य को भी प्राप्त करना होता है, उसके लिए भी यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम लोग साधक हैं, भक्ति पंथ में, साधना के पंथ में हैं, तो हमें दृढ़ता पूर्वक आचार्यों का अनुसरण ही करना है, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय समाज में देखा जा रहा है कि बहुत प्रकार का प्रचार हो रहा है और लोग अपने विचार से साधना बतला देते हैं, उससे कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवतम में इस प्रसंग में दूसरे जगह ब्रह्मा जी की उक्ति है कि ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति समीचीन उपाय का अवलंबन करता है तो बहुत आसानी से लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यथाग्नि मेधस्य मृतम च गोसु भुव्यम वृत्ति। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यथाग्नि एधसि, जिस व्यक्ति को आग प्राप्त करना है तो बस दिया सलाई ऐसे स्पर्श किया, या पहले के जमाने में दो लकड़ी को घिस देते थे, अग्नि की प्राप्ति हो जाती थी। इस समय मान लीजिए कि किसी को आग जलाना है, लाइटर है, लाइटर में एक बार ऐसे मारिए, क्लिक कीजिए, आग की प्राप्ति हो जाएगी। और इस उपाय को छोड़ करके कोई कहे कि ना हम अपने से आग जलाएंगे, दूसरे विधि से आग जलाएंगे, तो सैकड़ों रुपया खर्चा कर सकता है और बहुत कुछ करे, आग जलाने में कठिनाई भी हो सकता है कि आग की प्राप्ति ना हो। किसी को घी की जरूरत है तो सीधा से उपाय है, गाय का पालन करना चाहिए, दूध निकाल करके उसे घी बनाया जा सकता है। तो यथाग्नि मेधस्य अमृतम च गोसु, जिसको जल की जरूरत है तो पृथ्वी में पाइप डालते हैं, बोरिंग कर देते हैं, जल प्राप्त कर लेते हैं, या बाल्टी बांधते हैं किसी कुआं से, या घड़ा बांध करके कुआं से जल प्राप्त कर लेते हैं। किसी को अन्न की जरूरत है तो खेती करने से अन्न की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, कोई किसान ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना एकदम नहीं जानते, बहुत सारे किसान हैं कि अपना सिग्नेचर भी नहीं कर सकते, अंगूठा छाप रहे, लेकिन वे लोग क्विंटल के क्विंटल, टन के टन अन्न पैदा कर देते हैं, अपने परिवार का भी पोषण कर रहे हैं, शहर के लोगों को भी अन्न दे देते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं या वकील हैं, बहुत उनकी बुद्धि है, वो लोग अपने लेबोरेटरी में, अपने ऑफिस में चाहे कि हम लोग अन्न पैदा कर दें, तो वे नहीं कर सकते। लेकिन एक साधारण किसान वो पहले के उपाय का अवलंबन कर रहा है, खेती कर रहा है, तो अन्न उत्पन्न कर देता है। तो यह भौतिक के प्राप्ति की बात कही जा रही है, उद्यमने न वृत्ति। किसी को जीविका चलाना है तो कुछ उद्यम करता है, बिजनेस व्यापार करता है, उसकी जीविका चल जाती है। तो उसी प्रकार जोगेन भक्ति योग का कोई अवलंबन करता है, बुद्धि योग का अवलंबन करता है, गुणेश बुद्धिया कवयो बदलती है। व्यक्ति इसी संसार में भगवान को प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है? योगे भक्ति योग से, बुद्धि योग से, अधियंति हित्वा। ब्रह्मा जी स्ताप कह रहे हैं भगवान से कि अधियंति ये अपने हाथ में कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। कवयो बदन्ति, और विद्वान लोग उसका वर्णन भी करते हैं, कवि लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति इसी संसार में, इसी शरीर में किया जा सकता है, बुद्धि योग का अवलंबन करके, भक्ति योग का अवलंबन करके। तो उपाय पहले से निश्चित है। तो यह बहुत प्रिय विषय है, मैं बहुत बार इस पर बोलता रहता हूँ, लेकिन आज समय का अभाव है। एक बात ध्यान देने की है कि ऋषि लोग कह रहे हैं, पृथ्वी देवी कह रही हैं कि उपाय का अवलंबन करने से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। हम लोग तो भक्ति योग के पथिक हैं, भक्ति में भी उपाय पहले से निश्चित किया गया है, उन्हीं उपायों पर चलना चाहिए। और उन उपायों में एक उपाय यह भी है कि भगवान के भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए। भगवान के भक्तों का चरित्र सुनने से हमारे हृदय में भक्ति का संचार हो जाता है, उनका परमाणु आ जाता है। भक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है साधु संग। भक्तों के आशीर्वाद से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। और भक्ति के विषय में यह जानना चाहिए कि जो कारक भक्ति को प्राप्त कराने वाला है, वही कारक उसके वृद्धि को करने वाला है। जिससे भक्ति की प्राप्ति होती है, उसी साधनों को अपनाएंगे तो भक्ति में वृद्धि होती रहेगी। जैसे साधुओं के कृपा से, साधुओं के संग से भक्ति की प्राप्ति होती है, तो साधुओं के कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके संसर्ग से भक्ति की वृद्धि भी होती है। खास करके जो स्निग्ध भक्त हैं, भगवान के रसिक भक्त हैं, तो उनका संग करने से भगवान का अनुभव होने लगता है, भगवान का आस्वादन होने लगता है। जो व्यक्ति भगवान का आस्वादन करना चाहता है, भक्ति के रस का अवगाहन करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ उपाय करना जरूरी है। जीव गोस्वामी का विचार है कि जब तक व्यक्ति वृंदावन में वास, जब तक व्यक्ति राधा रानी का आश्रय नहीं लेगा और जब तक वृंदावन में वास नहीं करेगा और जब तक उनके प्रेम से भरे हुए भक्तों का संग नहीं करेगा, कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगा, यदि ये साधन नहीं करता है तो भगवान श्याम सुंदर के रस समुद्र में अवगाहन कैसे कर सकता है? भगवान के रस का अनुभव करना है तो तीन साधन बहुत महत्वपूर्ण है। अनाश्रित राधा ऐसे श्लोक है कि राधा रानी का जब तक आश्रय नहीं करते हैं और उनके वन का जहाँ उनका चरण चिन्ह है उसका आश्रय नहीं करते हैं और अनासिभ्य तद भाव गंभीर चेतन जब तक वैसे व्यक्ति का संग नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं जो उन जिनका चित्त उनके भाव से भरा हुआ है, राधा रानी के भाव से भरा हुआ है, तो कुतः श्याम सिंधु रसस्या वगाहन। और फिर ये जो भक्ति रस है, भगवान का सुख है, उनके अनुभव का सुख है, तो इस समुद्र में अवगाहन कैसे कर सकते हैं। एक दूसरे जगह कहा गया है कि जो राधा रानी का आश्रय नहीं लेता है, उनके वन का आश्रय नहीं लेता है और भगवान का आनंद लेना चाहता है, भक्ति का सुख लेना चाहता है, तो उसकी तो यही स्थिति है कि पूर्णिमा के अतिरिक्त किसी दूसरे दिन पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करना चाहता है। पूर्ण चंद्रमा का दर्शन तो केवल पूर्णिमा के दिन हो सकता है। तो उसी प्रकार भक्ति का सुख है, तो वैष्णवों के आशीर्वाद से, वैसे भक्तों के संग से होगा जिनके भक्त में, जिनके हृदय में भक्ति का रस है। जब तक उनका संग नहीं करते हैं, उनका आशीर्वाद नहीं लेते हैं, तो श्याम रस का अनुभव नहीं कर पाएंगे, अवगाहन नहीं कर पाएंगे। जैसे बिना पूर्णिमा के किसी दूसरे दिन पूर्ण चंद्रमा का दर्शन नहीं कर सकते। तो यह सिद्धांत है। आज बहुत पवित्र तिथि है, भगवान के शुद्ध भक्त या भगवान का ही एक रूप श्रीवास पंडित हैं जो नवद्वीप में अवतरित हुए। आप जानते हैं, प्रसिद्ध बात है कि चैतन्य महाप्रभु पांच रूप में अवतरित हुए, पंच तत्व कहते हैं, पंच तत्वात्मक कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्त्याख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। आप पंच तत्व की वंदना करते हैं चैतन्य चरितामृत में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्लोक की रचना किए हैं, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। चैतन्य महाप्रभु पांच रूप में, पांच तत्व में अवतरित हुए। एक तो खुद वे भक्त के रूप में हैं, नित्यानंद प्रभु भक्त के ही स्वरूप हैं, अद्वैत प्रभु भक्त के अवतार हैं, अवतार के रूप में भक्त, और भक्ताख्यम श्रीवास पंडित की आख्या भक्त है, इनको भक्त कहा जाता है, और गदाधर शक्ति हैं। और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इसमें तीन आराध्य हैं और दो आराधक। तीन आराध्य हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य, ये तीन आराध्य हैं। लेकिन आराध्य में भी एक महाप्रभु हैं, दो प्रभु हैं। इन आराध्यों में भी चैतन्य महाप्रभु परम आराध्य हैं, और ये दो भाई श्रीवास और गदाधर ये आराधक हैं, तो ये भक्त हैं। एक प्रश्न होगा कि जब पंच तत्व में भगवान का ही अवतार है तो ऐसे दो भेद क्यों कर रहे हैं, इस आराध्य और आराधक का? इसका कारण यह है कि उन तीनों में कभी कभी ईश्वर का भाव प्रकट हो जाता है। वे सब अवतरित हुए हैं भक्त रूप में, लेकिन उन तीन में कभी कभी ईश्वर का भी भाव प्रकट हो जाता है, लेकिन श्रीवास और गदाधर में कभी ईश्वर का भाव प्रकट नहीं हुआ। ये लोग ईश्वरता को प्रकाशित नहीं कि इस रूप में चैतन्य महाप्रभु का ईश्वरता प्रकटित नहीं हुआ, इसलिए इनको भक्त में ही रखा गया है। तो आप जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। इसमें आप जो प्रणति मंत्र पढ़ रहे हैं पंच तत्व का, तो इसमें ध्यान दीजिए, चार का तो मैंने एक्सक्लूसिव है, उल्लेख है, लेकिन ये जो पांचवा तत्व है श्रीवास आदि, तो श्रीवास मुख्य है, इसमें और भक्तों को भी समाहित किया गया है। तो जहां तत्व निर्णय किया गया है तो श्रीवास भक्तों के रूप है, इसीलिए इनको भक्त कहा गया है और शुद्ध भक्तों में इनकी गणना की गई है। तो श्रीवास पंडित रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक ग्रुप का, जो भी शुद्ध भक्त हैं, जो वे सब चैतन्य महाप्रभु के परिकर ही हैं, उनके अवतार के ही अंग हैं, श्रीवास उसमें प्रमुख हैं। अब श्रीवास ये गौर गणोदीपिका के अनुसार ये भक्तों के अवतार हैं और मुख्य रूप से नारद जी के अवतार हैं। तो श्रीवास पंडित भी कई एक भाई थे, से नारद जी पर्वत ऋषि भाई हैं और साथ रहते हैं, तो नारद जी के अवतार श्रीवास पंडित हैं और इनके भाई जो श्रीराम पंडित हैं वे पर्वत जी के अवतार हैं। तो श्रीवास प्रभु भक्त शुद्ध भक्त के रूप में इनकी गणना की जाती है, शुद्ध भक्त हैं और ये भगवान से कैसे प्रेम करते हैं और भगवान का कितना इनको ज्ञान है, ये सब आप जानकारी चैतन्य भागवत से प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु शिशु थे तो उस समय भी बहुत चंचल थे, जब थोड़ा और बड़े हुए कुमारावस्था प्राप्त हुए फिर भी उनकी चंचलता में कमी नहीं हुए, ये कुछ अधिक ही चंचल थे। जब वे विद्यालय में थे पढ़ रहे थे तो उस समय भी बहुत गंभीर विद्यार्थी नहीं थे, तेज तो बहुत थे लेकिन बहुत उत्पात भी किया करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई क्लास चल रहा है उसमें कोई टीचर कोई सिद्धांत बोले तो टीचर से चैलेंज कर देते थे कि इसकी स्थापना कीजिए, टीचर लाख प्रयास करता था उसको खंडित कर देते थे उसके तर्क को, और बाद में जो सिद्धांत टीचर दे रहा था उसी सिद्धांत को ये स्थापित कर देते थे। पहले तो एकदम खंडित कर देते थे, अब टीचर नहीं स्थापित कर पाता था, लेकिन बाद में उसी सिद्धांत को ये स्थापित कर देते थे। और कोई भी सिद्धांत था तो पहले विरोध करते थे फिर बाद में भक्ति के सिद्धांत को स्थापित कर देते थे। और जब यह इनके चांचल्य को उदंडता को वहां के टीचर देखते थे, जो वैष्णव टीचर भी थे, तो वे लोग प्रार्थना करते थे कि कदाचित यह निमाई भक्त हो जाता तो भक्तों का पक्ष बहुत मजबूत हो जाता। तो भगवान से प्रार्थना करते थे कि यह भक्त हो जाता, लेकिन कोई लक्षण नहीं दिख रहा था, वे लोग तंग ही हो जाते थे, इतना उद्धता करते थे उदंडता करते थे कि वे लोग तंग रहते थे। जब चैतन्य महाप्रभु गया में आए जिस राज्य को बहुत है दृष्टि से देखा जाता है और वास्तव में वहां के लोगों का व्यवहार अशिष्ट है, शिष्ट नहीं है, सबके साथ तो ऐसा नहीं कहा जा सकता लेकिन अधिकांश लोगों का अशिष्ट व्यवहार है, रफ व्यवहार है। चैतन्य महाप्रभु गया में आए, इस समय तो गया मतलब अतिशय निकृष्ट क्षेत्र है, वहां कोई जाना नहीं चाहता है। एक व्यक्ति गए थे गया में, वो कह रहे थे एक पंडा कह रहा था कि तुम नहीं समझ रहे हो, दान ऐसे नहीं देगा तो काट करके ले लेंगे। जो हो वो क्षेत्र के दृष्टि से भी बहुत निकृष्ट क्षेत्र है, मगध क्षेत्र। इधर काशी है, ठीक उसके विपरीत है, वो कर्मनाशा नदी भी है, बहुत अपवित्र नदी है। लेकिन ऐसा वर्णन किया गया है कि उस कीकट क्षेत्र में भी गया सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है। क्षेत्र वह बहुत अपवित्र है, कीकट क्षेत्र कहते हैं, लेकिन गया एक तरह से कह सकते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ है। वहां भगवान का चरण है और पितरों के पिंड दान के लिए भारत में सबसे अच्छा स्थान गया है। चैतन्य महाप्रभु भी गया में आए, वहां ईश्वरपुरी जी से भेंट हुई, उनसे मिले, उसी समय उनका प्रेम उत्थलित होने लगा। और गया के बाद जब नवद्वीप में गए तो सब लोग मिलने के लिए आने लगे, यात्रा का वृतांत सुनाए, और इसके बाद सब लोग कहने लगे कि यह क्या हो गया, निमाई तो बिल्कुल बदल गया है, एकदम बदल गया। आपस में बहुत चर्चा होने लगी, अब एकदम शांत रहने लगे। पहले उनकी स्थिति यह थी कि एक तरह से साधुओं को तंग भी करते थे, गंगा स्नान के लिए जाते थे तो कभी जो बड़े बूढ़े साधु भी स्नान करते थे वे पानी में डूब करके आते थे और उनका पैर पकड़ करके खींचने लगते थे। वो बूढ़े हाय हाय करने लगते थे, डूब जाएंगे डूब जाएंगे, तो मगर के रूप में आते थे, मानो कोई मगर पैर पकड़ रहा है, पकड़ करके और उनको डुबाने लगते थे। लेकिन अभी जब गया से लौट करके आए तो कोई उधर गंगा जी के तरफ जा रहा है तो उनका कुछ पूजा का सामान है तो वे अपने हाथ में लेकर के जाने लगते थे, किसी का कपड़ा है तो वह पहुंचा देते थे, और किसी को हाथ धोने के लिए या पूजा करने के लिए मिट्टी की जरूरत है तो वे बहुत नम्रता से पहुंचा देते थे। अब उनकी नम्रता देख करके सब लोग आशीर्वाद देते थे कि बहुत अच्छा, निमाई बदल गया, तुमको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो। और कृष्ण भक्ति की प्राप्ति का आशीर्वाद देते थे। अब कृष्ण भक्ति उनका प्रकाशित हो चुका था, प्रेम के विकार उभरने लगे थे, वैष्णवों में चर्चा होने लगी। कभी वे हुंकार करने लगते थे, कभी रोने लगते थे, तो इन सब लक्षणों को देख करके वैष्णवों में चर्चा होने लगी। और एक दिन वे लोग श्रीवास पंडित के यहाँ फूल तोड़ने के लिए गए। श्रीवास पंडित के आंगन में, उनके बाउंड्री में एक वृक्ष था और उसमें बहुत सुंदर पुष्प आते थे, और कितना ही लोग पुष्प तोड़े वो पुष्प समाप्त नहीं होता था। वृक्ष एक था, कई एक लोग पूजा के लिए ले जाते थे वृक्ष पुष्प, लेकिन वो पुष्प समाप्त नहीं होता था। सब लोग अपने ठाकुर जी के पूजा करने के लिए वहां जुटे, कई एक वैष्णव जुटे, और सब लोग चर्चा कर रहे थे कि निमाई में बहुत भारी परिवर्तन हो गया है, बहुत भारी परिवर्तन हो गया है। तो श्रीवास पंडित भी उनको देखने के लिए गए, और चैतन्य महाप्रभु में इतना परिवर्तन हो गया था कि अब माता बहुत घबरा रही थी। अब प्रेम के विकार उनके अंदर आ रहे थे तो अब वे कभी कुछ बोलने लगते थे, हंसने लगते थे, तो ऐसा सब लोग महसूस करने लगे कि निमाई पागल हो गया है, इसको कोई रोग हो गया है। तो और लोग तो बहुत चिंतित नहीं थे, कह करके चले जाते थे, लेकिन निमाई के व्यवहार को देख करके कि एकदम पागल जैसा इसका व्यवहार हो गया है, माता को बहुत चिंता होती थी। सची माता बहुत चिंतित थी कि ये क्या हो गया। भगवान से प्रार्थना करती थी, वे साफ साफ कह रहे हैं कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, हमारे पति को आप ले लिए, पति की मृत्यु हो गई, एक पुत्र था वो भी कहां गया कुछ पता नहीं है, ने पति को भी ले लिए, पुत्र को भी ले लिए, एक हमारा सहारा बचा है, इसको भी भारी रोग हो गया, हे भगवान आपकी क्या लीला है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसको क्या हो गया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो माता का तो केवल स्नेह उभर रहा था और कुछ नहीं, वे सोचती थी, उनके मन में यही आता था कि इसको वायु विकार हो गया। कुछ लोग आकर के कहने लगे कि अरे एकदम ये बाई है, वायु विकार है, इसका जल्दी दवा करो, जब तक दवा नहीं करोगे ठीक नहीं होगा। तो अब हम सब तो नहीं समझ रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि पैर को बांधना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि इसको डाब नारियल का जल देना चाहिए, कुछ लोग कहने लगे अरे इतना रोग बढ़ चुका है, ये नारियल के पानी से ठीक होगा, इसको तो सिवा घृत का प्रयोग करना चाहिए। कोई उपाय बतलाता था कि माथे पर गरम तेल रख, पकाया हुआ तेल रखना चाहिए, इसे शांत होगा। बहुत लोग सलाह देते थे कि जल्दी उपाय करो, जब तक ये रोग बढ़ न जाए तब तक इसको ठीक करो। सची माता तो अब सबकी बात सुनती थी और अपना आरत रोया करती थी, बहुत दुखी थी। एक दिन चैतन्य महाप्रभु को ने देखने के लिए श्रीवास पंडित भी वहां आए। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु भी मूर्छित हो जाते थे, और जब श्रीवास पंडित आए तो माता भी अपनी व्यथा सुनाई और चैतन्य महाप्रभु भी कहने लगे कि श्रीवास पंडित को नमस्कार किए और कहने लगे कि आप तो पंडित हैं, विद्वान हैं, आप बतलाइए कि हमको क्या हो गया है। लोग कह रहे हैं कि वायु का प्रकोप है, वायु प्रकोप है, आपके विचार में क्या है। श्रीवास पंडित कहे कि धन्य है वायु प्रकोप, और हमारी अभिलाषा यही है कि हजारों हजारों ऐसा वायु प्रकोप हमको हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। और सची माता को कहे कि माँ चिंता मत करो, ये भगवान के प्रेम का लक्षण है, वायु विकार नहीं है। इस विषय में मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसी चिंता एकदम मत करो। तो माँ थोड़ा स्थिर हुई। तो ऐसे जब गया से लौट करके आए तो श्रीवास पंडित प्रथम व्यक्ति हैं कि ठीक ठीक डायग्नोसिस की है, वे समझ गए, वे भक्त हैं, वे भक्ति के लक्षण को जानते हैं। तो उनको बतलाए, माता सची का दुख दूर हुआ, माँ सची का दुख दूर हुआ। और श्रीवास पंडित की जो पत्नी है, मालिनी नाम है ना, मालिनी, वे भी मातृ हृदय है, बहुत जगह उनका उल्लेख आया है, जन्म के समय ही उपहार लेकर के गई हैं, लेकिन खास करके नित्यानंद प्रभु से बहुत स्नेह करती थी। और नित्यानंद प्रभु उसके घर में जाकर के रहते थे, और अब नित्यानंद प्रभु एकदम बालक जैसा रहते थे, एकदम बालक जैसा। हमारी इच्छा थी कि मैं प्यार पढ़ पढ़ करके कहूंगा, लेकिन टाइम तो एकदम पूरा हो गया, तो मैं प्यार नहीं पढ़ रहा हूँ, एकदम समरी में कह रहा हूँ। नित्यानंद प्रभु भी एकदम बालक जैसा व्यवहार करते थे, इतना बालक जैसा व्यवहार करते थे कि भोजन करते समय अपने हाथ से भी भोजन नहीं करते थे। अब तो माता का स्नेह होता है, लड़के अपने से नहीं खाते हैं तो माँ ही खिलाने लगती है। तो मालिनी नित्यानंद प्रभु को अपने हाथ से ही खिलाती थी। देखिए वो भी वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु अपने हाथ से भोजन तक नहीं करते थे, और मालिनी कराती थी, स्नेह से कराती थी। एक दिन चैतन्य महाप्रभु वहां चले गए और वे कहने लगे श्रीवास पंडित से कि अरे इस अवधूत को अपने घर में रखे हो, इसके कहां जन्म हुआ जानते हो? यहां तो जन्म नहीं हुआ है नवदीप में, ये कहां का जन्मा है, किस वंश में जन्मा है, इसका आचरण भी कैसा है, तुम इसको अपने घर में रखते हो, तुम तो ब्राह्मण हो ना, तुम्हारी जाति तो गई, ऐसे अवधूत को रखे उसको, इसको तो घर से निकाल देना चाहिए, तुम्हारी जाति नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे जब बोले तो श्रीवास पंडित कहने लगे, देखिए जो व्यक्ति एक दिन भी आपका भक्ति करता है, अरे एक दिन में कुछ घंटा भी आपका भक्ति कर लिया तो वह हमको बहुत प्रिय है, वैसे व्यक्ति का भी मैं त्याग नहीं कर सकता। और यह नित्यानंद तो आपका द्वितीय कलेवर है, इनका हम त्याग कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास ऐसी बात मत कहिए, और आप कह रहे हैं तो हमारा भी निर्णय सुन लीजिए कि अवधूत चाहे मद्यपान करे, शराब पिए या वेश्यालय में जाए, कहीं भी जाए, ये हम इसका त्याग नहीं कर सकते, हमारा स्वामी है ये, हमारे इनके साथ है, इनके चरणों में मैं हूँ। जब इस प्रकार श्रीवास पंडित कहे तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास का आलिंगन कर लिए, बहुत प्रसन्न हुए, कहे कि धन्य हो तुम, हमारे बहुत प्रिय हो और तुम नित्यानंद प्रभु की सेवा कर रहे हो, उनके उनमें श्रद्धा है, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा घर सब प्रकार के धन धान्य से संपन्न रहेगा, अरे तुम्हारा तुम्हारे गांव में कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आ सकती, यहाँ के कुत्ते बिल्ली भी भगवान के प्रेम को प्राप्त करेंगे। चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद देने लगे और कहने लगे कि हो सकता है कि लक्ष्मी को भिक्षा मांगना पड़े, ऐसा संभव है कि लक्ष्मी देवी किसी दिन दरिद्र हो सकती हैं, भिक्षा मांगे, लेकिन तुम्हारे घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि तुम नित्यानंद प्रभु की सेवा किए हो। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु उनको आशीर्वाद दिए और श्रीवास पंडित का चैतन्य महाप्रभु से प्रेम है, नित्यानंद प्रभु से प्रेम है, और इतना प्रेम है कि अपने पुत्र परिवार का भी उनको कुछ ध्यान नहीं है। समय पूरा हो गया लेकिन दो मिनट में एक घटना कहना चाहता हूँ। श्रीवास पंडित का घर ही सेंट्रल प्लेस है, वही कीर्तन करते थे, कीर्तन के चलते बहुत उन पर उत्पात करने का प्रयास किया गया, राजा से शिकायत किया, पाखंडी लोग बहुत तंग करते थे, तो वह तो दूसरी बात है। एक दिन रात्रि के समय कीर्तन हो रहा था, सब लोग कीर्तन के आनंद में थे, चैतन्य महाप्रभु आनंद में नृत्य कर रहे थे, और उसी समय स्त्रियों का कुछ रोदन सुनाई देने लगा, उनका क्रंदन सुनाई देने लगा। श्रीवास पंडित का ध्यान उधर गया, वो घर में गए तो देखे कि उनका पुत्र मर चुका है, पुत्र मर चुका है, स्त्रियां स्वाभाविक रो रही थी, तुरंत मना किए, इस समय एकदम नहीं रोना है, चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में रस में बाटा पड़ सकता है, भंग हो सकता है, तुम लोगों को रोना नहीं है। कोई भी स्त्री यदि रो दी तो मैं शपथ लेता हूँ, चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में बाधा पड़ा तो मैं जाकर के गंगा जी में कूद करके आत्महत्या कर लूंगा। तुम लोगों को मान लो कि रोदन नहीं रोक सकती हो, स्त्री स्वभाव है और संसार धर्म है, तो कीर्तन समाप्त होने के बाद जितना इच्छा हो उतना रो दो, लेकिन कीर्तन के बीच में यदि कोई स्त्री रोई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो ऐसे अब तो बात दूसरे भक्तों को भी पता चलने लगी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं था, आनंद में कीर्तन कर रहे थे, एकाएक वे कीर्तन रोके और कहे कि हमको ऐसा लग रहा है कि श्रीवास के घर में कुछ अमंगल हो गया है, कोई अप्रिय घटना हो गई है। जब इतना कहे तो भक्त लोग बतलाने लगे और पूछे चैतन्य महाप्रभु की कितने कब की ये घटना है, तो लोग बतलाए कि रात्रि के समय ढाई घड़ी या कितना बीत चुका है, चैतन्य महाप्रभु तो अब श्रीवास की बहुत प्रशंसा करने लगे, धन्य हो, और कहे अब सब लोग पुत्र सब लोग वहीं घेर लिए, और चैतन्य महाप्रभु उस मरे हुए पुत्र से कहने लगे कि अरे इतना पवित्र घर छोड़ करके, श्रीवास पंडित को छोड़ करके क्यों तुम जा रहे हो। वो मरा हुआ बेटा कहने लगा कि ये सब आपका विधान है, जिसका जितना दिन लिखा हुआ है उतना दिन ही रह सकता है, आपके निर्बंध से जा रहा हूँ, आप रखने वाले हैं, दूर करने वाले हैं, और इस संसार में माता पिता कौन है, सब अपने कर्म से कुछ दिन के लिए साथ रहते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु तत्व ज्ञान कराए उस बालक से। अब तो समय के अभाव में हमारी इच्छा थी कि पढ़ पढ़ करके कहूं, लेकिन अब पढ़ करके कहां से कह सकता हूं। तो इसके बाद कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु खुद गए, और जो क्रिया किया जाता है अंत्येष्टि संस्कार वैसे किए, और श्रीवास को सांत्वना देने लगे कि श्रीवास पंडित आप कभी दुखी मत होना, मैं और नित्यानंद दो तुम्हारे पुत्र हैं। तो ऐसे कहने से सब भक्त लोग हर्षित होने लगे और बहुत बहुत आशीर्वाद दिए श्रीवास को कि यह तुम्हारा घर वैकुंठ ही है। बहुत प्यार में वर्णन किया गया, समय के अभाव में हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन श्रीवास पंडित भगवान को समझते हैं, भक्त हैं, भक्ति के तत्व को समझते हैं, और भगवान उनको बहुत आत्मीयता से स्वीकार किए हैं, अपने को पुत्र कह रहे हैं, और उन्हीं के घर को कीर्तन के लिए रखे, साफ कहे हैं कि जो व्यक्ति इस घर में आएगा उसको वैकुंठ का सुख मिलेगा। श्रीवास पंडित हर तरह से महान है। आज इस पवित्र तिथि पर हम इतना ही प्रार्थना करते हैं कि उनके भक्ति का कुछ अंश हम लोगों को भी प्राप्त हो। हरे कृष्ण। पढ़ करके कहने से आनंद आता है, लेकिन टाइम नहीं है।